नमस्कार श्रोताओ, छिंदवाड़ा वाले से आपका दोस्त योगेश। आज भारतीय स्थल सेना दिवस है। 15 जनवरी 2023 में 75वीं स्थल सेना दिवस मना रहा है। देश के वीर जवानों रणबांकुरों की शहादत पर गर्व करने वाले का एक आज विशेष दिन है। इस दिवस देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने का दिन है। 15 जनवरी 1949 को ब्रिटिश सेना से पूरी तरीके से मुक्ति होकर फील्ड मार्शल एम करियप्पन पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण करने की मान्यता के उपलक्ष्य में थल सेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस के रूप में आज और इसी के साथ में भारतीय जवानों द्वारा दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले जवानों और जंग के दौरान देश को सर्वोच्च बलिदान हुए उनके परिजनों व विधवाओं के लिए सेना पदक और अन्य पदकों से इस दिन सम्मानित किया जाता है। आज हमारे साथ इंडियन वेटनर्स ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष एवं एस के सिंगोटिया सर जुड़े हुए हैं। सिंगोटिया सर, मोबाइल आने पर स्वागत है आपका।
धन्यवाद गौतम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही समस्त मोबाइल वाणी को सुनने वाले समस्त श्रोताओं को मेरी ओर से सादर जय हिंद, सादर नमस्कार और मकर संक्रांति के इस पावन पर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां।
सर, भारतीय थल सेना दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं सर
जी,
भारतीय स्थल सेना दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे सर?
देखिए, हमारे देश जैसा कि सब हम लोग जानते हैं, अनेकता में एकता को समेटे हुए विश्व पटल पर भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर बिना किसी भेदभाव के समस्त जाति वर्ण के लोग रहते हैं और देश प्रेम की भावना से ओत-प्रोत रहते हैं। तो देश प्रेम की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से और चूंकि भारतीय थल सेना का ये 75वां थल सेना दिवस कहलाएगा, तो इसलिए इसको इसका महत्व और भी बढ़ जाता है कि इसके मतलब हमारे 15 जनवरी 1946 को उनचास को भारत को 15 जनवरी 1949 में फ्रांसिस बुचर जो कि ब्रिटिश कमांडर थे, उन्होंने अपना पूरा भार, पहले ये रॉयल आर्मी के नाम से जाना जाता था, अब उसको इंडियन आर्मी का टाइटल दिया गया और उस समय तत्कालीन रैंक में हमारे पास में लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा साहब थे, तब वो उन्होंने पदभार भारतीय सेना प्रमुख के रूप में संभाला था। तो इस उनकी इस यादगार दिन को मनाने के लिए प्रतिवर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, या यूं कहें कि भारतीय थल सेना का जन्म इंडिपेंडेंट भारत का 15 जनवरी 1949 के दिन शुरू हुआ था जी।
सर, क्या स्थानीय स्तर पर थल सेना दिवस युवा कैसे मनाए?
पहले चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर जानकारी का अभाव है। युवा जो है थल सेना के बारे में सिर्फ केवल भर्ती के ही बारे में समझते हैं और वो करते हैं कि कंपटीशन एग्जाम जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है कि आर्मी डे कब है, एयरफोर्स डे कब है, नेवल डे कब है, ये वो जान रहे हैं, लेकिन एज ए जनरल स्कूलों में कोई जानकारी नहीं होती। और मेरा तो ये मानना है कि इसको मनाना क्या मनाने का है, मनाना हर चीज सिलेबस में रख देनी चाहिए। तो जो कम से कम मिडिल स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के जो बच्चे हैं इनके सिलेबस में भारतीय सेनाओं की शौर्य गाथाओं का एक सिलेबस जरूर होना चाहिए हर कक्षा के लिए। तो प्राइमरी लेवल पर एक कहानी के रूप में, उसको थोड़ा सा बढ़ाकर मिडिल स्कूल के लेवल पे, मिडिल स्कूल के लेवल पर थोड़ा सा और हायर सेकेंडरी लेवल पर भर्ती संबंधी चीजों का ये समावेश पाठ्यक्रम में किया जाना चाहिए, जिससे कि आम नागरिक के साथ साथ शिक्षक वर्ग के साथ साथ जो भी उस किताब को पढ़ता हो, और जो भी मतलब इवन बुक सेलर भी फ्री टाइम में मैं देखा किताब पढ़ते रहते हैं, अगर ये कहानियों के रूप में संकलित किया जाएगा और पाठ्यक्रम में रखा जाएगा तो जन जागरूकता, आर्मी डे, एयरफोर्स डे, नेवल डे, इन सबके बारे में अच्छे बढ़ चढ़ कर होगी। ये बचपन से ही सिलेबस पाठ्यक्रम में रखा जाना चाहिए।
सर, थिएटर कमांड क्या है? सर,
थिएटर कमांड बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, ये बड़ा समसामयिक है और विश्व में जितने भी क्या नाम से उन्नत डिफेंस फोर्सेज हैं सबके पास अपनी अपनी एक थिएटर कमांड है। जैसे कि वर्ड थिएटर कहा गया है तो ये यूं मान के चलिए कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जितने भी अपने डिफेंस से कंसर्न है, जिसमें कि तटीय समुद्री सेना जिसको इंडियन कोस्ट गार्ड कहा जाता है, भारतीय तटरक्षक सेनाएं, वो भी मतलब उनका काम भी लगभग नेवी जैसा ही होता है, लेकिन जैसे आर्मी में एक बीएसएफ होती है, सॉरी आर्मी के जैसे ही एक बीएसएफ पैरामिलिट्री फोर्स होती है, उसी प्रकार से इंडियन कोस्ट गार्ड भी होती है जो कि नेवी के बराबर ही पूरी ड्यूटी परफॉर्म करती है। तो इस प्रकार से मैं ये कहना चाह रहा था कि जितने भी इंडियन डिफेंस फोर्सेज हैं इन सबके बीच में एक तालमेल बैठाने के लिए एक कंबाइंड ऑफिसर्स की टीम बनाने का है, जिसका कि प्रमुख सीनियर मोस्ट उस दल का होगा। तो इसमें तीनों सेनाओं के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स प्लस अपना तटरक्षक सेनाओं को भी सम्मिलित करने का विचार है। इन सबका एक संयुक्त उपक्रम होगा और इनका जो कमांडर होंगे वो कमांड लेवल के यानी कि 3-स्टार ऑफिसर होंगे। तो इस प्रकार की जो कमांड बनाए जाने की योजना है वो उसको हम थिएटर कमांड बोलते हैं। सन 2019 फरवरी के महीने में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बहुत इसका सदन से लेके बाहर पेपरबाजी और न्यूज मैगजीन सब में छपा था, फरवरी 19 में बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम भारतीय वायुसेना द्वारा सफलतापूर्वक दिया गया था। तो इसकी सटीक निशानेबाजी से तिलमिलाए हुए पाकिस्तानी आकाओं ने और हुक्मरानों ने अगले दिन पाक के फाइटर प्लेन को भेजा था और उन्होंने हमारे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर एरिया के ऊपर से उड़ान भरते हुए देश में घुसपैठ की थी। तो उसे पूर्व मतलब उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी कमान के जो वायुसेना के अधिकारी थे, जो इंचार्ज थे, उन्होंने लड़ाकू पायलट ने अपने लड़ाकू जहाज से उन्हें खदेड़ दिया था। लेकिन दुर्भाग्य से इस पूरे ऑपरेशन में हमारा एक Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए थे, जिसमें कुल 5 एयर क्रूज और पायलट लोग मिला के शहीद हो गए थे। तो ये सिर्फ लड़ाई के समय पैनिक अवस्था में हुआ था, और उसमें क्या हुआ था कि बाद में ये पता लगा कि ये जो इस जो Mi-17 हेलीकॉप्टर था, इसको इंडियन मिसाइल ने ही अपने आर्मी के द्वारा छोड़ी हुई मिसाइल थी, और वो थोड़ा सा गलत फहमी में उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें आइडिया नहीं था कि कौन सा जहाज एयरफोर्स का है अपने इंडियन का और कौन सा पाकिस्तान का है, उसी पैनिक में। लेकिन चूंकि इंडियन एयर डिफेंस आर्मी की तरफ से भी एक ट्रूप होता है, ये उनके द्वारा छोड़ी हुई मिसाइल से हमारा ही हेलीकॉप्टर हिट हो गया था। तो ऐसी कैजुअलिटीज आगे भविष्य में ना हो और तीनों सेनाओं को आपस में एक दूसरे के ऑपरेशन की जानकारी मिलते रहे, मोडस ऑफ ऑपरेंडी की किस प्रकार का ऑपरेशन किया जाना है, ये उन्हीं संबंधित तीनों सेनाओं के अंग के अधिकारियों और जवानों को रहे, इन सबके लिए एक कमांड गठित की जानी है। तो उसी को हम लोग ऐसे थिएटर कमांड का नाम देते हैं।
जी सर। सर, क्या अग्निवीर योजनाओं के माध्यम से देश की सेवा में आप देश के युवा किस तरीके से सहभागी हो सकते हैं?
अब यह है कि ये अग्निवीर योजना जो है एक बड़ा मैटर ऑफ डिस्कशन एंड मैटर ऑफ डिबेट का मुद्दा बन चुका था, काफी इस पर शोर शराबा हंगामा भी हुआ। लेकिन चूंकि अब भर्ती स्टार्ट हो गई है, और अग्निवीर योजना के बारे में पहले थोड़ा सा दो शब्द बताना चाहूंगा कि अग्निवीर योजना प्रतिवर्ष 40,000 सैनिकों की भर्ती लेने का लक्ष्य लेके किए गए है, और ये भर्ती केवल 4 वर्ष के लिए होगी, जिसमें 1 से 2 साल के मध्य की अवधि ट्रेनिंग पीरियड पे रखा जाएगा। इसके बाद उन्हें विभिन्न एस्टेब्लिश डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में पोस्ट किया जाएगा, लेकिन इन्हें कोई रैंक न देते हुए मात्र अग्निवीर कहा जाता है। और 17 से 22 लगभग ये इस उम्र के लोग इनमें भर्ती होते हैं, तो 4 साल के बाद उनको सम्मान एक सर्टिफिकेट, अग्निवीर का एक सर्टिफिकेट और 12वीं पास का सर्टिफिकेट, प्लस उनको जो पेमेंट्स में 30% राशि काटी जाती है जिसे सेवा निधि पैकेज के फंड में जमा होता है, तो इन 4 सालों में जमा राशि को कुछ अपनी तरफ से भी गवर्नमेंट इसमें कुछ फंड मिलाती है, तो लगभग 10 लाख से 12 लाख के मध्य सेवा निधि पैकेज के आधार पर टैक्स फ्री राशि इनको 4 साल के बाद दे दी जाती है, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो ये ऐसा सरकार का प्रोग्रामिंग है, सरकार का मतलब यह है सिलेक्शन के समय ही प्रक्रिया। तो ये अग्निवीर जो है 4 साल जब वापस आते हैं तो इनकी संख्या 75% होती है, लेकिन शेष 25% जो अथॉरिटीज एयरफोर्स की हो, नेवी की हो, आर्मी की हो, जो समझते हैं कि 25% इनको रखा है तो उनको सेना में कंटिन्यू करने को कहा जाता है। तो अब यह है कि अग्निवीर कैसे, मतलब अग्निवीर योजना में क्या आपका प्रश्न क्या था सर?
सर अग्निवीर योजना के माध्यम से युवा किस तरीके से देश की सेवा में सहभागी हो सकते हैं?
जी हाँ, तो मेरा यह है कि जो युवा अग्निवीर योजना में भर्ती हो गए और जो सेवा कर रहे हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो व्यक्ति 75% के कट शॉर्ट लिस्ट के जो बाहर निकालने जाने वाली लिस्ट है उसमें अगर बाहर आ जाते हैं तो उन्हें मेरा ये सुझाव है कि जब भी वो बाहर आए सबसे पहले अपनी वो जो भी उन्होंने सेवा निधि पैकेज के आधार पर जो राशि रखी है उसको सुरक्षित रखें, प्लस अपने कैरियर के लिए जो उनके पास में एक ऑलरेडी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा उनके डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट से, उसके मार्फत वो अपना बैंक का लोन लें, सरकारी योजनाओं का लाभ लें, प्लस जो भी भर्ती खुलती है सिविल डिपार्टमेंट की अपना सेवा में रहती है अगर वो अपना एजुकेशन बढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा पोस्टल करस्पोंडेंस स्कीम से भी कई यूनिवर्सिटीज डिग्री कोर्सेज चलाती हैं, जिसमें इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है ये प्रमुख रूप से है और पंजाब यूनिवर्सिटी भी है, तो इन सब चीजों में सेवा में रहती है इन 4 सालों में कोशिश करें कि वो अपना टेक्निकल और एकेडमिक एजुकेशन बढ़ाएं, और जब वो बाहर निकले फौज से छोड़ के और अग्निवीर की 4 वर्ष की सेवा समाप्त, जिसको कि एंगेजमेंट पीरियड कहते हैं अग्निवीर का एंगेजमेंट पीरियड समाप्त होने के बाद 5वें वर्ष जब वो अपने घर लौटे तो उस समय ये अब ऐसे नहीं कि खाली बैठे, सिर्फ अपने देश प्रेम की भावना वही बनाए रखें, और तमाम पुलिस की है बीएसएफ की है, तो ये योजना सिर्फ आर्मी से बाहर निकाली जाती है लेकिन ये फिर भी पात्र होंगे पैरामिलिट्रीज होमगार्ड्स स्टेट लेवल की पुलिस इन सब के लिए। इसी दौरान कोई अग्निवीर ग्रेजुएशन लेवल का कर लेता है तो उसको मतलब प्राथमिकता के आधार पर भर्ती के समय उनको प्राथमिकता दी जाएगी जिस भी लेवल के लोग एग्जाम देंगे। तो इस प्रकार से ये एक सैनिक तो नहीं रहेंगे लेकिन फिर भी वही देश प्रेम की भावना को उत्प्रोत रखते हुए अपनी सिविल की या नागरिक नौकरी कर सकते हैं।
जी सर, तो ये थे पूर्व वायु सैनिक के एस सिंगोतिया सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी के माध्यम से भारतीय स्थल सेना दिवस पर मोबाइल वाणी के माध्यम से अपनी जानकारी साझा की। सिंगोतिया सर, मोबाइल वाणी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
गौतम साहब और समस्त श्रोता, आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना और जो विचार शायद मैं आपको क्लियर नहीं कर पाया उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, और फिर भी आप लोगों ने मुझे इतना योग्य समझा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, और सबको पुनः मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सपरिवार आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ईश्वर सबका भला करे। जय हिंद,
जय हिंद।